बाबा ने हम बच्चों को समय प्रति समय हमेशा समय का इशारा दिया है कि दिन प्रतिदिन समय कैसे नाजुक होता जा रहा है और उसमें भी आत्माएं कितनी नाजुक होती जा रही है। जैसे जैसे आत्मा में शक्ति कम होने लगती है वैसे वैसे खुद के संस्कार, खुद का स्वभाव कई प्रकार के विघ्न को निर्मित करने के लिए निमित्त बन जाते हैं। बाहर की परिस्थिति तो आती ही है लेकिन अधिकतर जो हलचल की स्थिति क्रिएट होती है उसका कारण है अपने भीतर की कमजोरी। और इसीलिए बाबा कई बार हम बच्चों को ये इशारा और सावधानी भी देते रहे कि बच्चे अपने अंदर परिवर्तन लाना है, अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है। कमजोरी अपनी होती है, नाम उसको माया दे देते हैं कि माया आ गई, वास्तव में वो कमजोरी होती है क्योंकि माया नाम की कोई चीज ही नहीं है। माया कहना ये जैसे स्वयं को बचाने के लिए किसी पर तो दोष डालना चाहिए इसलिए माया कह दिया। जैसे एक छोटा बच्चा होता है जब वो खड़ा रहना सीखता है और उस समय उसके पैर के बैलेंस नहीं रहता है, कुछ पकड़ के खड़े होने का प्रयत्न करता है, दो मिनट खड़ा हो पाता है और गिर पड़ता है, तो सबसे पहला गिर के क्या करता है? चारों ओर देखता है, किसी ने देखा तो नहीं। और अगर उसकी मां ने उसको देख लिया होता तो रोना शुरू कर देता है, आंखों में से आंसू एक भी नहीं गिरेगा लेकिन रोना शुरू कर देता है। और उसकी मां हड़बड़ा करके सीधा वहां पहुंच जाती है, उसको गोद में उठा लेती है और जैसे उसको शांत करने के प्रयत्न से कहती है, नहीं बेटा तेरा दोष नहीं था, ये टेबल ही ऐसा है, और टेबल को दो थप्पड़ मार के और बच्चे को चुप करा देती है कि तेरा दोष नहीं। और वो बच्चा भी चुप हो जाता है, सोचता है कि मेरे पर से दोष टल गया और ये टेबल पर दोष चला गया। और वहां से हमने ये आदत को जीवन के अंदर अपना लिया कि जब भी जीवन में हमसे कोई गलती हो तो दोष डाल दो दूसरे पर। और इसलिए हमेशा ही हम कभी परिस्थिति पर दोष डालते रहे, कभी कोई व्यक्ति आ गया तो व्यक्ति पर दोष डाल दिया, कभी कोई चीज है, समय है, किसी पर भी दोष डालते रहते हैं। और जब ज्ञान में आए तो वो संस्कार छूटा नहीं तो माया पर दोष डाल दिया कि माया आ गई क्या करें, हम तो पुरुषार्थ करना चाहते हैं, अमृत वेले माया आ जाती है तो क्या करें। वास्तव में खुद के अंदर अलबेलापन के संस्कार है, आलस्य के संस्कार है, लेकिन खुद के संस्कार को जब तक हम नहीं देखते हैं और ये कह देते हैं माया आ गई और अपने आप को जैसे प्रोटेक्ट कर देते हैं कि हाँ मेरा दोष नहीं है। लेकिन बाबा ने हमेशा ये कहा कि माया माना ही अपनी कमजोरी, माया कोई चीज का नाम नहीं है, पेपर टाइगर है। ये बाबा ने हमें समझ दी है, कोई चीज का नाम नहीं है। और इस तरह से जब अपने पर दोष लेने की हिम्मत नहीं आती है तो पुरुषार्थ में भी अलबेलापन स्वतः आता है। जिस समय हम हर कर्म के लिए अपने आप को जिम्मेवार समझने लगते हैं तो परिवर्तन करना सहज हो जाएगा, क्योंकि महसूसता की शक्ति ये परिवर्तन का आधार है। बाबा ने कल की मुरली में भी हमें यही बात कही बहुत डीपली अंडरलाइन करके कि अब समय अनुसार जितना समय तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है उस अनुसार हमें अपने अंदर भी परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए भी सबसे पहला अंडरलाइन बाबा ने जो कराया स्वभाव संस्कार का परिवर्तन, कि स्वभाव संस्कारों में जो कमजोरी है उसका परिवर्तन करना जरूरी है। और ये परिवर्तन भी कितनी देर के अंदर करना है, जैसे कागज पर एक बिंदी लगाने में जितना समय लगता है उतना प्रैक्टिकल लाइफ में भी बिंदी लगाने जैसा समय लगे, यानी बात आई हो और बिंदी लग जाए तो हलचल की स्थिति हो ही नहीं, ये बाबा का भाव था। अब ऐसी अंदर से अचल अडोल और निर्भय स्थिति हो जाए, बातें अंत तक आनी ही है, ये भी बाबा ने हम बच्चों को स्पष्ट किया हुआ है कि अंतिम घड़ी तक पेपर आने हैं। बहुत सुंदर मेरा एक अनुभव है कि जब मेरा पैर का फ्रैक्चर हुआ तो किसी ने आकर के मुझे कहा कि हिसाब किताब पूरा हुआ, तो उसी समय एक बड़ी बहन वहां खड़ी थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हिसाब किताब नहीं है। ब्राह्मणों का हिसाब किताब जिस दिन हम ब्राह्मण बने उसी दिन समाप्त हो गया, तभी हम ब्राह्मण बन सकते हैं। जिसका हिसाब किताब अभी तक बाकी है वो दुनिया में ही है, वो तब तक ब्राह्मण नहीं बन सकता है। लेकिन अब जो हमारे सामने बातें आती है वो पेपर है और ये पेपर को हमें पास करना है। और बहुत सुंदर ये मुझे महसूस हुआ उस वक्त कि जब हम हिसाब किताब कहते हैं तो कई बार हिम्मतहीन हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि मेरा हिसाब किताब ऐसा, कई बातों को लेकर के आगे पीछे की बातों को लेकर के भी जब स्मृति में वो बातें आती है तुम अक्सर हिम्मतहीन हो जाते, दिल शिकस्त हो जाते हैं कि मेरा हिसाब किताब ऐसा क्यों। लेकिन अगर पेपर समझो तो उमंग उत्साह आता है कि ये पेपर को मुझे पास करना ही है, तो एक स्पिरिट अंदर में आती है पास करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी महसूसता हुई कि कोई भी बात जीवन में आती है उसको हिसाब किताब न समझ करके पेपर समझना चाहिए और ये पेपर मुझे पास करना ही है, तो शक्ति भी आ जाती है, अंदर से ही अपने अंदर शक्ति आती है और हिम्मत का कदम जैसे बढ़ाते हैं तो बाबा की मदद का भी स्वतः अनुभव करने लगते हैं। हिसाब किताब समझने से वो हिम्मत का कदम उठाने की शक्ति नहीं आती है। तो भले वो हिसाब किताब हो भी तो भी, लेकिन उसको अगर पेपर समझ लिया जाए तो पेपर माना मुझे पास करना है, और उमंग उत्साह जब आ जाता है तो पेपर को पास करना आसान हो जाता। उसमें हलचल में आने के बजाय एक चैलेंज के रूप में उसको स्वीकार करने की तैयारी हो जाती है, और जहां चैलेंज है वहां निर्भय होकर के आगे बढ़ना सहज हो जाता है। क्योंकि अंतिम समय जो पेपर आने हैं वो तो चारों ओर से आने हैं, और अंतिम पेपरों को पास करने से पहले, जैसे स्कूलों में भी यूनिट टेस्ट को पास करना जरूरी होता है, तो सिंगल सिंगल पेपर आते हैं, अंतिम पेपर फिर सब एक साथ में आ जाते हैं। ठीक इसी तरह बाबा ने भी हमें कहा है कि बच्चे अंतिम समय जो पेपर आने हैं चारों ओर से आने हैं। चारों ओर जब हम कहते हैं तो कौन से चारों ओर से आने हैं? तो पहला पेपर होगा अपने ही स्वभाव संस्कारों का पेपर। हमारे स्वभाव संस्कार में अभी तक भी अगर सात्विकता नहीं है, जहां भी तामसिकता संस्कारों के अंदर पड़ी हुई है, तो वो स्वयं का पेपर लेने का एक बहुत बड़ा आधार बन जाएगा। जैसे दुनिया में भी कहते हैं दूसरों को निपटना सहज हो जाता है, लेकिन स्वयं स्वयं के सामने कैसे फेस कर पाएंगे, स्वयं स्वयं को कैसे फेस कर पाएंगे? तो अपने ही स्वभाव संस्कार जो अभी तक कड़ापन है, परिवर्तन नहीं किया है, नरम भी नहीं किया है उसको, तो वो परिवर्तन नहीं होता, तो वो स्वभाव संस्कार हमारा अपना पेपर लेने के लिए निमित्त बन जाएंगे। गुस्से का संस्कार है या जो भी संस्कार है, किसी को कौन सा संस्कार, झूठ बोलने का संस्कार होगा, किसी के अंदर और भी कई प्रकार के संस्कार होंगे, अभी तक अगर हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और वो आइडेंटिफाई करके उसको परिवर्तन महसूस करना, और महसूस करेंगे तो परिवर्तन होगा। अगर महसूस तक भी शक्ति नहीं है अपने अंदर कि हाँ ये मेरे स्वभाव संस्कार में कड़ापन है, तो उसको परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, और तब अपने आप को फेस करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए बीच बीच में ये पेपर भी आता रहता है, लेकिन वो पेपर आता है हमें रियलाइज कराने के लिए, लेकिन हम अभी तक रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। स्वयं का दूसरा पेपर है अपनी ही कमजोरियों का पेपर। हमारे अंदर जो भी आलस और अलबेलेपन को लेकर के जितनी भी कमजोरियां हैं पुरुषार्थ में, ये कमजोरियां आज भले छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन समय आने पर ये मैग्निफाइड रूप में हमारे सामने आएगी, और वही माया के आने का द्वार खोल देंगी। यानी व्यक्ति अपनी कमजोरी के वश ऐसा हो जाएगा कि जिसमें से कितना भी छटपटाए बाहर निकल नहीं पाएगा। तो एक तो स्वभाव संस्कार कड़ा है और दूसरा कमजोरी है, दोनों अगर मिल जाए तो कितना भयानक रूप ले सकती है। और तीसरा पेपर जो स्वयं का ले आएगा स्वयं की ओर से, वो है कर्म भोग का पेपर। कर्म भोग भी हमारा पेपर लेगा, क्योंकि कई प्रकार के कर्म हमारे जो हो रहे हैं, जिसके प्रति हमारा अटेंशन नहीं है, स्वाभाविक रीति से कर रहे हैं और हम सोचते हैं कोई बात नहीं, चलाते जा रहे हैं, तो ये कर्म भोग के रूप में आएगा हमारे सामने। और उसके लिए जो बाबा ने हमें अभ्यास बताया है कि कर्म योग से कर्म भोग के ऊपर विजयी बनना। मुझे याद आता है 69 की बाबा की वाणियां, बाबा ने जब अब शरीर छोड़ा था, अव्यक्त हुए, तो जो 12 संदेश आए थे उसमें शायद दूसरा या तीसरा संदेश है कि जब बच्चों ने बाबा से पूछा कि बाबा आपको अंतिम समय कैसी फीलिंग आ रही थी, तो बाबा ने बहुत सुंदर उसका वर्णन किया हुआ है कि काफी देर तो कर्म भोग की जैसे युद्ध चल रही थी अंदर में, कर्म योग की कर्म भोग के साथ युद्ध चल रही थी। माना शरीर जैसे छोड़ने से पहले एक प्रकार से युद्ध करता है अंदर में, और उसके ऊपर आत्मा अपने कर्म योग की शक्ति से विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। और फिर बाबा ने वो सारा वर्णन करके कहा कि धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि कर्म योग की विजय कर्म भोग के ऊपर हो गई, और जैसे ही उसकी विजय हुई तो सहज ही शरीर छोड़ना कोई मुश्किल नहीं लगा, लेकिन जैसे एक वस्त्र उतारने जैसा अनुभव हुआ कि वस्त्र उतार दिया। तो अंतिम समय जैसे कई बार एक युद्ध कशमकशी अंदर जो चलती है, ये है कर्म भोग का कर्म योग के साथ का युद्ध। और अगर कर्म योग की शक्ति अधिक होगी, यानी देही अभिमानी स्थिति होगी, कल भी बाबा ने इस बात को अंडरलाइन किया कि देह भान और देह अभिमान ये कैसे बीच में रोड़ा डालता है, लेकिन अगर देही अभिमानी स्थिति होगी और कर्म में अभ्यास में हमारा नेचुरल रूप में आता होगा, तो कर्म योग की कर्म भोग के ऊपर विजय सहज हो जाएगी। और ये सभी दादियों बाबा मम्मा ने भी प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा ये बताया, सभी ब्राह्मणों को प्रत्यक्ष कर दिखाया कि किस प्रकार कर्म भोग की जब युद्ध चल रही होती है तो कर्म योग उसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त करता है, और वो विजयी होकर के कैसे सहज शरीर से अलग होते हैं। तो ये तीन पेपर जो है स्वयं स्वयं के ओर से लेंगे, तो ये पहला सर्कल है स्वयं के ओर से पेपर। दूसरा पेपर आएगा संबंध से, दूसरा कोना जो है संबंधों का कोना है, तो संबंधों से पेपर आएगा। उसमें सबसे पहला संबंध हमारा किसके साथ है, किसके साथ हमारा संबंध है, अपनी ही कर्मेंद्रिय के साथ। तो हमारा अपनी कर्मेंद्रिय के साथ का जो संबंध है, ये कर्मेंद्रियां भी अपना पेपर लेने के लिए निमित्त बनेंगी। कर्मेंद्रिय किस तरह चलायमान होगी, और जैसे ही चलायमान होती है तो मनोवृत्ति को कैसे परिवर्तित कर देती है और वहां फेल हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा हमेशा शुरू से ही कहते रहे कि हमारा है ही राजयोग। राजयोग माना अपनी कर्मेंद्रिय के पर राज्य प्राप्त करना, स्वराज्य अधिकारी बनना, क्योंकि ये सबसे नजदीक का संबंध है हमारा आत्मा और शरीर का। शरीर का आत्मा के साथ बहुत गहरा संबंध है, और सबसे नियरेस्ट संबंध हमारी कर्मेंद्रियां हैं। तो कर्मेंद्रिय के ऊपर अगर अटेंशन नहीं दिया हुआ है तो कर्मेंद्रिया हमें विचलित कर देंगी, हलचल में ले आएगी और वहां वो पेपर लेने के लिए निमित्त बन जाएगी। दूसरा संबंध हमारा भौतिक चीज वस्तुओं के साथ है। सारा समय हम भौतिक चीज वस्तुओं को यूज करते हैं, तो दूसरा संबंध हमारा भौतिक चीज वस्तुओं के साथ है। और जब भौतिक चीज वस्तुओं के साथ का हमारा संबंध है तो ये भी बाबा ने कहा है कि अंतिम समय ये सारे साधन भौतिक चीज वस्तु लाइट पर चलने के कारण फेल हो जाएगी, और फेल हो जाएगी तो अंदर में ये हलचल क्रिएट करने के लिए निमित्त बनेगी। इसलिए पहले से ही हम अपने आप को, अपनी प्रकृति को, अपनी नेचर को उस अनुसार ढाल दे कि अगर ये साधन है तो यूज करो, नहीं है कल तो कम से कम मैं अंदर हलचल में तो नहीं आऊं, या वही साधन मुझे भयभीत अनुभव कराने वाले तो नहीं बने। और उसमें अगर मानो किसी को पंखे के बिना नहीं चलता है, अब गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ता जा रहा है ये तो हम सभी जानते, और लाइट फेल हो गई, एसी तो चलेगा ही नहीं, लेकिन पंखा भी अगर नहीं चला तो उस समय हालत क्या होगी। तो उस समय ये हम चेक करें कि हमारी हलचल वाली स्थिति है या अचल वाली स्थिति है, और अचल मुझे बनाना है अपनी प्रकृति को भी कि कुछ भी हो जाए, साधन अगर फेल हो गए तो भी मुझे अपनी तपस्या के अंदर ये विघ्न खड़ा हो या हलचल में मेरी स्थिति को ले आए और उसी समय प्राण त्यागने हो तो क्या स्थिति होगी हमारी। इसलिए भौतिक चीज वस्तुओं के साथ के संबंध के पर भी विजयी। और तीसरा संबंध हमारा है लौकिक अलौकिक परिवार से। ये लौकिक अलौकिक परिवार से भी जितना हम नष्ट हुआ रहेंगे उतना हम वो पेपर में भी पास होने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो ये पहला पेपर था स्वयं का स्वभाव संस्कार, अपनी कमजोरी और कर्म भोग, शरीर का पेपर। दूसरा पेपर था संबंधों का, जो अपनी कर्मेंद्रिय द्वारा, भौतिक चीज वस्तुओं के द्वारा और लौकिक अलौकिक संबंधियों के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा, ये दूसरा पेपर है। हर पेपर में तीन तीन है, ए बी सी डी, ऐसे ए बी सी होता है ना, इस तरह से। तीसरा पेपर आएगा परिस्थितियों से, समस्याओं से और हालातों से, ये तीसरा पेपर होगा। उसमें भी ये तीन चीजें हैं, परिस्थिति, समस्याएं और हालाते, ये तीन पेपर बाहर से आएंगे। जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन वो भी मेरा पेपर लेने के लिए बहुत बड़ा कारण बन जाएगी, और अनेक रूप से ये कारण को सर्जेंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनना सीखो, कारण स्वरूप नहीं निवारण स्वरूप बनना सीखो, क्योंकि ये भी अंतिम पेपर का एक हिस्सा है। ये तीसरा कोना है पेपर का, और चौथा कोना है प्रकृति हलचल मचाएगी, और प्रकृति के पांचों तत्व जब हलचल मचाएं तो ये भी एक बहुत बड़ा पेपर लेने के लिए निमित्त बनेगी। तो इसलिए ये है चारों ओर के पेपर। अब ये चारों ओर के पेपर में भी तीन तीन बातें देखी, माना 12 पेपर एक साथ में अगर आए तो कितनी अंदर में शक्ति होनी जरूरी है। 12 पेपर को फेस करना है। तो अभी जो हम जीवन के अंदर ब्राह्मण जीवन में अनुभव करते हैं, ये यूनिट टेस्ट, कभी शरीर का हिसाब किताब आ जाता है, कभी स्वभाव संस्कार हो जाता है, कभी लौकिक अलौकिक हो जाता है, कभी कर्मेंद्र, वन बाय वन आता है। वन बाय वन इसीलिए आता है कि कम से कम हम देख तो सके अपने आप को कि हम पास हुए या फेल हुए, और अगर फेल हुए तो मुझे कहाँ मेहनत करने की जरूरत है, कौन से सब्जेक्ट पर मुझे मेहनत करने की आवश्यकता है, कहाँ मैं फेल हो रही हूँ और किस कारण से मैं फेल हो रही हूँ, वो कम से कम एक एनालिसिस करने का तो समय मिला है हमको। तो इसलिए अभी जो हमारे सामने बातें आती है वन बाय वन आती है, 12 मास में 12 पेपर आएंगे, लेकिन अंतिम समय जब आएंगे एक साथ आएंगे जिसमें कमजोर होंगे, अगर सेल्फ एनालिसिस नहीं किया होगा तो उस समय बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बाबा ने हमेशा साकार मुरली के अंदर ये एक बहुत सुंदर लाइन कही हुई है कि जहां जीत वहां जन्म, माना जैसे ही ये पेपरों के ऊपर जीत प्राप्त कर लेंगे तो जैसे जीत होंगी वहां जन्म होगा, जहां जीत वहां जन्म, यानी वहां जन्म, जैसे दादी जानकी जी अपने क्लास में बता रही थी कि कुछ लोग क्षत्रिय अभी तक युद्ध करने के संस्कार है, चिंता करने के संस्कार है तो वैश्य है ना, शूद्र के संस्कार अलग है, तो कौन से संस्कार है हमारे, जहां जीत वहां जन्म, तो किस प्रकार के पेपर में हम फेल हो रहे हैं उसी अनुसार वहां जन्म। तो बाबा की साकार के अंदर मुरलियां अगर ध्यान से सुनी होंगी तो ये एक लाइन कई बार आती है, उसके ऊपर शायद हमने गौर नहीं किया हो, लेकिन बाबा ने श्री कृष्ण का मिसाल लेकर के बताया हुआ है कि बच्चे जहां जीत वहां जन्म, कि वो महाराजा महारानी के स्टेटस पर क्यों जाते हैं, क्योंकि हर प्रकार के पेपर के ऊपर अंतिम समय विजयी हो गए, इसलिए लास्ट में कर्म भोग का पेपर के ऊपर भी विजयी हो गए। इसलिए कल बाबा ने बार बार कहा फॉलो ब्रह्मा बाप, कि ब्रह्मा बाबा के सामने भी अलग अलग संस्कार के भी लोग आए, बातें भी आई, हालातें भी आए, सब प्रकार के पेपर आए बाबा के सामने। बाबा ने कौन सा पेपर पास नहीं किया होगा, हर प्रकार के पेपर को पास किया है, तभी जहां जीत वहां जन्म के महाराजा महारानी के स्टेटस पर बाबा मम्मा चले गए। तो उस अनुसार हम भी फॉलो फादर अगर करें, यानी हम भी अपने संस्कारों को पहचाने कि कहां वीकनेस है, और उसके लिए बाबा ने जो सहज युक्ति बताई कि बिंदी लगाना सीखो, बातें आएंगी बिंदी लगाओ, पहली बात ये कि बिंदी लगा दो। कैसे बिंदी लगाएंगे, किसी ने मेरे को बहुत सुंदर कल प्रश्न पूछा कि बाबा की मुरली के अंदर कई बार हम सुनते हैं कि बिंदी लगाओ, लेकिन बिंदी लगाना माना क्या? तो बिंदी लगाना माना, जैसे बाबा ने कहा, अयथार्थ विचारों को स्टॉप करना और उस वक्त कल्याण के विचारों को निर्माण करना, कि जरूर इसमें भी कोई कल्याण समाया हुआ है, तो अयथार्थ विचार बंद हो जाएंगे और ये बिंदी लग गई। कल्याण का सोचो कि इसमें क्या कल्याण समाया हुआ है, ये है बिंदी लगाना। दूसरा बिंदी लगाना मतलब धैर्यता, धीरज धर मनवा जो कहते, तो धैर्यता में अपने आप को ले आओ, और धैर्यता में लाने के लिए गंभीर बनना जरूरी है। जितना व्यक्ति के अंदर गंभीरता होगी उतना वो धैर्य रख सकता है कि समय का इंतजार करो, समय पर्दा खोल देगा, हमारा तो कल्याण हो नहीं सकता है, वो व्यर्थ नहीं चलाएगा, लेकिन समय को देखता है कि समय जरूर कुछ सिखाना चाह रहा है मुझे, कुछ पढ़ाना चाह रहा है, वो मुझे पढ़ लेना है। तो बिंदी लगाना माना कि धैर्यता के साथ वो परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाह रही है, वो लेसन सीखना। अगर लेसन सीखने की प्रवृत्ति है, वो एटीट्यूड है अंदर में, तो बिंदी लगाना सहज हो जाएगा कि बाबा हर चीज मुझे सिखाना चाहते। अभी भगवान साक्षात आकर के मुझे सिखाए ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन समय वो कार्य करता है कि मुझे कोई पाठ पढ़ा देता है कि इसमें ऐसा नहीं, ऐसा तुम्हें करना चाहिए था, तो वो पाठ पढ़ लो। और जितना वो पाठ पढ़ लेंगे तो बिंदी लग जाएगी। व्यर्थ सोचते रहेंगे, अपना दोष नहीं देखेंगे, पाठ नहीं पढ़ेंगे, तो फिर व्यर्थ चलना स्वाभाविक है, कितना भी व्यर्थ चले। लेकिन ये परिस्थिति मुझे क्या सिखा रही है, ये लेसन सीखने का एक प्रयत्न करो। जितना लेसन सीखने की बात अंदर में आएगी तो बिंदी लगाना सहज हो जाएगा। तीसरा बिंदी लगाना माना कि जैसे कोई कहते हैं कि बार बार मेरे सामने ये बात क्यों आती है, मैंने तो कई बार ये बात को खत्म करने का प्रयत्न किया, फिर बार बार मेरे सामने ये बात क्यों आती है। तो जैसे एक टीचर होता है स्कूल में, और टीचर का अगर कोई फेवरेट स्टूडेंट हो, माना उस स्टूडेंट के प्रति उस टीचर को बहुत उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं कि ये स्टूडेंट होनहार है, आगे चल करके बहुत आगे बढ़ेगा। जब टीचर उसकी क्षमता को पहचान लेता है तो वो ये नहीं चाहता है कि मेरा स्टूडेंट फेल होना चाहिए। जैसे अगर वो देखता है कि वो गणित में कमजोर है, मैथमेटिक्स में कमजोर है, तो वो अलग अलग ढंग से उसको प्रैक्टिस देगा ताकि किसी भी तरीके से फाइनल एग्जाम में अगर वो बात आए तो ये फेल न हो जाए, लेकिन किसी भी तरीके से आए तो भी ये पास हो जाए। ठीक इसी तरह कोई पेपर अगर हमारे सामने बार बार आ रहा है, अलग अलग ढंग से आ रहा है, तो इसका मतलब ये बाबा का प्यार है, परम शिक्षक का इतना प्यार है कि बाबा नहीं चाहता है कि ये बच्चा मेरा फेल हो जाना चाहिए। नहीं, बाबा नहीं चाहता ये बच्चा, क्योंकि बाबा को मुझ में इतनी उम्मीदें हैं, मेरे से इतनी अपेक्षाएं हैं कि ये बच्चा अंत में मेरा नाम रोशन करेगा। तो अगर अलग अलग ढंग से वो प्रैक्टिस देगा तभी तो हम परफेक्ट बनेंगे, नहीं तो अगर हमें ज्ञान ही नहीं होगा तो हम फेल स्वाभाविक फिर कहेंगे अरे हमने तो सोचा ही नहीं था ऐसा भी होता होगा। तो कभी बच्चे ये न कहे, इसीलिए बाबा अलग अलग ढंग से वो प्रैक्टिस करा रहा है, ये बाबा का प्यार है। और अगर इस प्यार को महसूस करने की शक्ति आ जाए अंदर में तो कभी भी हलचल में नहीं आएंगे, व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा कि भाई मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, हम बाबा को इतना याद करते हैं फिर ऐसा क्यों हो रहा है। यही तो बाबा का प्यार है कि बाबा की अपेक्षाएं आपके प्रति बहुत अधिक है, बाबा आपकी क्षमता को जानता है, और जानता है इसलिए बाबा नहीं चाहता है ये बच्चा मेरा फेल हो जाना चाहिए, है ना। अगर इस भाव से उसको लो तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा और बाबा के प्यार का अनुभव होने लगेगा, और ऐसा लगेगा कि जैसे बाबा के ऐसी असीम प्यार की वर्षा मेरे ऊपर हो रही है। जो बाबा ने कल भी मुरली में कहा कि जब प्यार की बात आती है तो हरेक बच्चा कहेगा कि हाँ बाबा का मेरे साथ बहुत अधिक प्यार है, और बाबा का है भी, लेकिन साकार में क्योंकि समझो हम सभी ने वो प्यार का अनुभव नहीं किया जो दादियों ने किया, है ना। दादियां जिस तरह से प्यार का वो साकार का फीलिंग यहाँ तो इस रूप से तो नहीं आएंगे, लेकिन ये पेपर जब आता है अलग अलग रूप से अगर बार बार मेरे, तो ये मतलब है बाबा का इतना अधिक प्यार है हमारे साथ कि बाबा नहीं चाहता है कि ये बच्चा मेरा फेल होना चाहिए। तो व्यर्थ चलेगा नहीं, समर्थ संकल्प चलेगा, अंदर में शक्ति आएंगी, हिम्मत आएंगी कुछ करके दिखाने की कि हाँ बाबा हम जरूर तैयार हो जाएंगे ये बात को पूरा करने के लिए। ये है फुल स्टॉप लगाने की विधि। तो पहली बात बताई कल्याण सोचना, दूसरी बात बताई धैर्यता रख करके समय जो पाठ पढ़ाना चाहता है उसको समझो, उसको सीखो, और तीसरा बाबा के प्यार की वर्षा का अनुभव करो, तो वो फुल स्टॉप लगना, बिंदी लगना आसान हो जाएगा। चौथा, ड्रामा मेरी माँ है, ड्रामा मेरी माँ है, तो माँ हमेशा बच्चे को आगे बढ़ाती है। जो चीज के लिए हम शायद जा रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, ड्रामा जब देखती है कि इसके वो पात्रता नहीं है, तो फिर ड्रामा दूसरा द्वार खोल देता है, और जब दूसरा द्वार खोलता है तो शायद वो चीजों को छोड़ना पड़ता है, तब वो चीजों को प्राप्त कर सकते। जो दूसरा द्वार अपॉर्चुनिटी का खोला है, जो द्वार भगवान ने मेरे लिए खोला है या ड्रामा ने मेरे लिए खोला है, उसको समझने का प्रयत्न करो। कई बार हम हलचल में इसलिए आ जाते हैं कि मैं पुरुषार्थ कर रही थी इस दिशा में और ड्रामा ने जैसे मेरे हाथ से वो चीज क्यों छीन लिया, मेरे हाथ से वो चीज क्यों चली गई, लेकिन शायद उससे अधिक अच्छी तरह से ड्रामा मुझे चांस देना चाहता था। जैसे मैं कभी याद करती हूँ समय को कि जब मैं मधुबन में आई तो दादी ने मुझे बहुत सुंदर बात कही, बड़ी दादी ने, कि देखो उषा ज्ञान सरोवर बन रहा है, यहाँ अभी सेवा बढ़ेगी, अकेले शीलूबेन या शशिबेन दो ही सब मैनेज नहीं कर पाएंगे, यहाँ हैंड्स जरूरी है। तो दादी की भावना है कि तुम यहाँ रहो, लेकिन फिर भी अगर तेरी दिल है कि मैं सेंटर संभालूं या मैं सेंटर पर जाऊं, तो दादी उसके लिए भी तेरे को स्वीकृति देंगी। तो उस समय मेरे मन के अंदर एक दुविधा जरूर थी कि सेंटर लाइफ में जाऊं, सेंटर में संभालूं या मैं मधुबन निवासी बनूं। लेकिन उस समय मुझे यही आया कि एक चीज मुझे छोड़नी पड़ेगी, या मुझे मधुबन का भाग्य छोड़ना पड़ेगा या मुझे सेंटर का भाग्य छोड़ना पड़ेगा। दोनों का अपना अपना है, सेंटर का अपना है, मधुबन का अपना है। एक छोड़ेंगे तो दूसरा मिलेगा, दोनों लड्डू लेना चाहे ये तो हो नहीं सकता है, दोनों में से एक ही मिलेगा। तो ड्रामा में हमारे सामने भी कई सीन ऐसी आती है कि एक छोड़ना पड़ता है तब जाकर के दूसरा मिलता है। अगर मैं वो सेंटर का भाग्य नहीं छोड़ती थी तो आज मधुबन का भाग्य मुझे मिलता था, मधुबन का भाग्य मिला तो आज इतना आगे बाबा ने कितना आगे बढ़ाया, ये प्रत्यक्ष में खाली मैं साक्षी होकर के नहीं देख रही हूँ, लेकिन सारा ब्राह्मण परिवार साक्षी होकर के देख रहा है। लेकिन अगर मैं सेंटर के भाग, तो शायद मैं एक हद में बंद जाती थी तो ये बेहद का भाग्य नहीं मिलता था। लेकिन उस समय जो कहा जाता है डिसीशन लेना कि एक पकड़ना है, दोनों लड्डू साथ में नहीं खा सकते, तो ये मैंने जीवन के अंदर महसूस किया कि कभी कभी ड्रामा के अंदर ऐसा दृश्य आता है कि एक छोड़ो एक पकड़ना होता है। कई बार हम उसमें इतने हीरे हुए हैं कि हम सोचते पता नहीं ये क्या होगा, इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहते, और इसको छोड़ना नहीं चाहते तो ये भाग्य मिलता नहीं है। उसके प्रति अगर व्यर्थ चलाएंगे तो न वो मिलेगा न ये मिलेगा। फिर सेंटर पर रह करके अगर मैं सोचते अरे मैं आज यहां होती थी, ऐसा करती थी, ऐसी सेवा, फायदा क्या? जब समय आया तब हमको छोड़ना था, हमने नहीं छोड़ा तो वो चांस किसी और को मिल जाता कि बाबा को तो सेवा करानी है। अगर मैं मधुबन का भाग्य नहीं लेती थी तो दादी किसी और टीचर को ऑफर कर लेती थी, मैं सेंटर पर चली जाती थी दादी किसी और टीचर को ऑफर कर लेती थी, भाई ज्ञान सेवा सरोवर की सेवा तो बढ़नी है, मधुबन की सेवा तो बढ़नी है, तो हैंड्स तो चाहिए ही था, तो ये भाग्य किसी और के नसीब में चला जाता था। और फिर उसको देख करके मैं व्यर्थ संकल्प, अरे मैं होती थी उस समय में, लेकिन अब तो टू लेट हो गए, टू लेट हो। इसलिए कभी कभी जीवन में ऐसी बातें आती है, लेकिन उस समय सोचो कि ड्रामा मेरे लिए एक अवसर का द्वार खोल रही है। जब अवसर का द्वार देखेंगे तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा, फुल स्टॉप लगाना सहज हो जाएगा। और इसी का मतलब है फुल स्टॉप, कि जरूर ड्रामा मुझे कोई न कोई विशेष भाग्य देना चाहता है, इसलिए ये अवसर मेरे सामने आया, लेती हूं तो मैं आगे बढ़ती हूं, नहीं लेती हूं तो कोई और ले लेगा। फर्क किसको पड़ना है? मैं जहां की वहां ही रहूंगी, आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, और फिर व्यर्थ संकल्प चलाती रहूंगी, हलचल में आती रहूंगी, मेरा मन एकदम विचलित होता रहेगा, फायदा क्या? इसलिए ड्रामा कभी कभी हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। बाबा हमेशा इसलिए कहता है कि बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के ड्रामा को देखो, आदि मध्य अंत को सामने लाते हुए ड्रामा को देखो, तो हलचल समा और अचल स्थिति में आकर के फुल स्टॉप लगाना सहज हो जाएगा। दूसरी बात के जब भी जीवन के सामने कोई भी परिस्थिति आती है तो क्यों हुआ, क्या हुआ, ये क्वेश्चन वाले टेढ़े रास्ते पर नहीं जाओ, क्योंकि क्वेश्चन वाला टेढ़ा रास्ता कहाँ ले जाएगा। मुझे बहुत सुंदर बात लगी थी, गुलजार दादी ने एक बार क्लास कराया था, शायद मधुबन वालों का ही क्लास था और दूसरा भी कोई क्लास था या विदेशियों का क्लास था। बहुत अच्छी बात दादी ने बताई कि ब्राह्मण जीवन माना खुशियों भरा जीवन, खुशी जैसा खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं हम कहते हैं, लेकिन हमारी खुशी गायब क्यों हो जाती है? तो पांच सवालों के कारण हमारी खुशी गायब हो जाती है, कि जब भी कोई बात आती है तो हम क्वेश्चन मार्क में चले जाते, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, किस लिए हुआ, ये का 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 करने लग जाते। अब का करने वाला कौन होता है? कौवा होता है। तो कहते हैं ना, वो हंस की चाल छोड़ करके कौवे की चाल चलने लगा। अब हंस की चाल छोड़कर कौवे की चाल चलेगा तो क्या मिलेगा? हंसपना भी चला गया और कौवे काका करने वाला क्या मिलेगा? पत्थर लोग मारेंगे उसको, कब से कौवा काका का कर रहा है। तो ऐसे हम भी अपने हंस की, ब्राह्मण चाल ये हंस की चाल है, तो हंस की चाल छोड़ करके जो फुल स्टॉप लगाना, हंस माना फुल स्टॉप, बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो, प्लेन रखो, तो ये है हंस की चाल। उसके बदले क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, किस लिए हुआ, ये इंक्वायरी में चले जाते। अब जब इंक्वायरी में जाएंगे, खोदना शुरू करेंगे, खोद 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 करके क्या निकलेगा? फालतू बातों को खोदेंगे तो क्या निकलेगा? मिट्टी निकलेगी, और क्या निकलेगा? उसमें कोई हीरा रतन निकलने वाला है क्या? तो मिट्टी ही निकलेगी, और सारी इंक्वायरी करने के बाद हमारी खुशी बनी रहेगी या गायब हो जाएगी? गायब होनी है, नेचुरल है, क्योंकि खोद खोद करके निकला क्या? कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। अच्छा, खोदने के बाद पता चला ये व्यक्ति ने ऐसा किया, उसने ऐसा चाल चली, उसने ऐसा किया, ये कारण था इसलिए ऐसा हुआ। ये सारा जानने के बाद मन दुखी होगा या खुश होगा? सारी इंक्वायरी करने के बाद सारा निकाला, इंक्वायरी करके तथ्य जो निकला वो क्या निकला, मन को दुख देने वाला या सुख देने वाला? कौन सा तथ्य निकला? दुख देने वाला तथ्य निकला। और दुख देने वाला तथ्य जब निकलेगा तो मन कितना हलचल में आएगा। इसलिए क्यों क्या वाली चाल चलो ही नहीं, वो टेढ़े रास्ते पर जाओ ही नहीं। अपनी हंस की चाल बहुत सुंदर है, हीरे रतन को अलग करते रहो और उससे खेलते रहो, बस उसमें कितनी खुशी मिलेगी। तो कौवे की चाल चलना माना क्यों क्या की इंक्वायरी में जाना, और उससे हमको कभी खुशी नहीं मिलेगी। मन दुखी होगा, भयभीत भी होने लगेगा और हलचल में भी आ जाएगा, अचल स्थिति नहीं रहेगी। तो इसीलिए अचल स्थिति रखना माना, बिंदी लगाना माना, हंस की चाल में रहो, हंस वाली चाल चलते रहो, ज्ञान रतन चुकते चलो, और ज्ञान रतन चुक करके अपने जीवन को धन्य करो। किसके लिए हमारा ये जीवन है? क्यों क्या मैं जाने के लिए क्या? इतना वैल्यूबल टाइम एनर्जी किस लिए हम खर्च करें? अपने शारीरिक मानसिक एनर्जी किस लिए खर्च करें? हो गया ना, चलो जो भी हुआ हो गया ना, अब आगे क्या करना है उसमें जाओ। तो उससे आपकी खुशी कभी नहीं जाएगी और आपकी स्थिति भी अचल रहेगी, निर्भय रहेगी। क्यों क्या मैं गए तो स्थिति हलचल में आएगी। टाइम और एनर्जी दोनों व्यर्थ गवाया, व्यर्थ गवाने के कारण उसका रिजल्ट पॉजिटिव कभी नहीं होगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव ही आएगा। और जैसे ही पता चला ये व्यक्ति ने किया, उसने कहा, उसने किया, उसके प्रति कितना व्यर्थ चलेगा, तो मिला क्या? क्यों क्या मैं जाने से मिला क्या? मिला कुछ? कई बार कई लोग बड़ी होशियारी अपनी दिखाते, अरे मैंने पता कर लिया सब कुछ, पता करके किया क्या, खुद की खुशी को गायब किया, और जिसको भी सुनाते हैं उनकी खुशी को भी गायब करते हैं। प्राप्ति क्या हुई? क्या यही समझदारी है क्या ज्ञान के बाद भी? ज्ञान माना समझ, समझदारी यह है हो गया, चलो अब आगे क्या करना है। इंक्वायरी में नहीं जाओ। जिसने भी किया, जिसने भी किया उसका कर्म उसके सिर पर, हम क्यों इंक्वायरी करें? हम इंक्वायरी ना करें, बस अपनी हंस की चाल में मस्त रहो। लोग डिस्टर्ब करने के लिए भी, आपकी चाल को बिगाड़ने के लिए भी बातें बनाएंगे, उसने किया, इसने किया। छोड़ो, बाबा भी हमेशा कहते छोड़ो, छोड़ो तो छूटो। हाँ, पकड़ के जितना रखेंगे तो कभी भी कुछ भी हाथ आना नहीं है। इसलिए फालतू बातों में मुझे जाना नहीं है, हंस की चाल में, ज्ञान की बातों में मस्त रहना है। दादी जानकी ने कल बहुत अच्छी बात सुनाई कि जब भी कोई बात को लेकर के अगर मन डिस्टर्ब हो तो क्या करो? मुरली पढ़ो या सेवा करो। योग नहीं करना उस समय, योग करेंगे व्यर्थ संकल्प चलेगा। योग में बैठे बैठे वहां बाबा के सामने व्यर्थ संकल्प चलाएंगे। उसके बदले कोई ना कोई मुरली लो, सहज से सहज तरीका में बताऊं, कोई भी अव्यक्त मुरली जो हाथ में आए खींचो, और कोई भी कागज, कोई भी पेज खोलो, उसमें आपको आपका जवाब मिल जाएगा। और जैसे ही आपको जवाब मिल जाएगा इतनी राहत मिलेगी, अनुभव करके देखो, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और इतनी राहत मिल जाती है कि व्यर्थ से तो छूट जाते हैं, लेकिन माइंड भी हमारा इतना सुंदर हो जाता, क्लीन और क्लियर हो जाता है, और योग भी उसके बाद अच्छा लगेगा। तो इसलिए दादी जानकी ने जो ये विधि बताई, इस विधि का इस्तेमाल करो। ये अनुभवी है, अनुभवी बाबा के बच्चों ने जिन बातों को प्रैक्टिकल अप्लाई किया है, और ये बातों को अगर अपने अनुभव के आधार से हमें कह रहे हैं, तो उसमें जरूर उन्होंने कुछ ऐसी प्राप्ति की है, तभी तो हमको कह रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो उस बातों को हम भी अपने जीवन में अप्लाई करें, तो देखो फुल स्टॉप लग जाएगा, बुद्धि भी एकदम क्लीन हो जाएगी, हर्षित होने लगेंगे और खुशी खुशी से सेवा करने लग जाओ। वो पुण्य जो जमा होगा, जैसे बाबा ने कहा कि आप सेवा करते हो पुण्य जमा होता है, तो उसका रिजल्ट है खुशी, थकावट नहीं है। अगर सेवा करने के बाद भी थकावट महसूस हो रहा है, इसका मतलब सोच अयथार्थ है, तभी थकावट का अनुभव हो रहा है। बाकी तो सेवा करने के बाद तो खुशी ही होनी चाहिए। तो ये है हलचल वाले समय में भी 12 प्रकार के पेपर अगर साथ में भी आ जाए, तो भी हलचल वाले समय में भी अपनी स्थिति को अचल रखने के लिए ये कुछ मुख्य बिंदु जो मैंने सोचे थे वो आप सबके साथ शेयर किए। तो ये है अचल अडोल निर्विघ्न स्थिति बनाने का।